अध्याय सीमाओं के भीतर जब सम्मान मांगनी ना पड़े। स्थान मेंस गारमेंट सेक्शन अंडर गारमेंट शेल्फ। समय अगली दोपहर 1:35। मॉल के अंदर रैना आज फिर उसी शांत ऊर्जा के साथ खड़ी थी। मेंस गारमेंट सेक्शन की हर शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई और अंडर गारमेंट उसकी नज़र से ठीक तरह व्यवस्थित हो चुकी थी। अभी अभी उसने एक युवा लड़के को ऑफिस इंटरव्यू के लिए सही सूट चुनने में मदद की थी। फिर एक वृद्ध जोड़ा आया था जिनकी मुस्कान रैना की आवाज सुनकर और गहरी हो गई थी। काउंटर की घड़ी ने 1:35 का वक्त दिखाया और तभी एक अलग सी चाल वाला आदमी सेक्शन में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 32-35 के आसपास, ढीली जीन्स, गहरी भूरे रंग की टी शर्ट और आंखों में एक टेढ़ी मुस्कान जो किसी बात के बिना भी वहां टिकी हुई थी। वो बिना किसी झिझक के सीधा उस रैक की ओर बढ़ा जहां अंडरगारमेंट्स रखे थे। कुछ सेकंड तक उसने कपड़ों को छुआ, फिर झटकी से पलटा और सीधा रैना के पास आ गया। एक्सक्यूज मी, उसने धीमे लेकिन जानबूझकर खिंचे हुए स्वर में कहा। हाँ सर, रैना तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में उसकी ओर मुड़ी। ये अंडरवियर वाला सेक्शन?
जी सर, ये सामने बाई ओर है। ब्रांड के हिसाब से साइजिंग और पैकेजिंग दोनों दी गई हैं।
वो मुस्कुराया। आप थोड़ी हेल्प कर देंगी? आप जैसा कोई गाइड करे तो शायद फिट भी बेहतर लगे। उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे संदेह के घेरे में आ रही थी। रैना का चेहरा शांत रहा। उसने पैकेट उठाकर दिखाया। ये ऑल डे कम्फर्ट सीरीज है, कॉटन बेस्ड, और ये वाला थोड़ा प्रीमियम है, सिल्क मिक्स्ड।
आप किसे सजेस्ट करेंगी?
उसकी आंखें अब कपड़ों पर कम और रैना पर ज्यादा थीं।
सर, ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, रैना ने ठंडे लेकिन विनम्र स्वर में कहा।
देखिए, बात चॉइस की नहीं है, उसने आगे झुकते हुए धीमे से कहा। बात है फीलिंग की। मुझे लगता है जो लड़की खुद पहनती है वही अच्छे से बता सकती है ना कि कंफर्ट कैसा होता है।
रैना का हाथ अचानक उस पैकेट पर रुक गया और उसकी आंखों की चमक थोड़ी बदल गई।
सर, उसने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, ये सेक्शन पुरुषों के अंडरवेयर का है, ना कि आपकी निजी फीलिंग्स का डिस्कशन जोन। कृपया उस सीमा में रहिए जहां ग्राहक और स्टाफ के बीच इज्जत बनी रहे।
वो आदमी थोड़ा चौंका। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टाफ इतनी ठंडी दृढ़ता से जवाब देगा।
हो, आई वॉज जस्ट जोकिंग, उसने हंसते हुए कहा।
इतना तो फ्रेंडली होना चाहिए ना, आप तो बहुत सीरियस ले गई बात को।
रैना अब भी स्थिर थी। अगर आपकी फ्रेंडली होने की परिभाषा किसी महिला को असहज महसूस कराना है तो हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ।
और रही बात आपकी पसंद की, तो वो सामने डिस्प्ले पर है, जाकर देख लीजिए। मैं पीछे काउंटर पर मिल जाऊंगी जब बिलिंग करनी हो।
उसने हाथ में पैकेट रखा और मुड़ी तो स्टाफ के कुछ लोग दूर से सब देख रहे थे। काजल भी थोड़ी दूर से सारी बात समझ चुकी थी। वो आदमी कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर हल्की सी शर्मिंदगी और बनावटी मुस्कान के साथ वापस शेल्फ की तरफ गया। 2 बजे। रैना काउंटर पर खड़ी थी, बिलिंग मशीन चेक कर रही थी। काजल चुपचाप आई और बगल में खड़ी हो गई।
मैम, आपने जैसे उसे हैंडल किया ना, किसी और से नहीं हो पाता।
रैना ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुरा दी। सीमा तय करना पड़ता है काजल, वरना लोग तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लेते हैं।
काजल ने धीरे से सिर हिलाया। 2:15। वो आदमी एक ब्रांडेड अंडरगारमेंट का पैकेट लेकर आया और काउंटर पर रख दिया। आवाज में अब वो घमंड नहीं था, ना वही कटाक्ष।
बस ये चाहिए और थैंक्स। रैना ने मशीन पर स्कैन किया बिना कोई भाव लाए। 999। उसने कार्ड स्वाइप किया और बिना कोई और बात किए चला गया। 2:30। सेक्शन में सन्नाटा था। रैना ने जब अपनी डेस्क पर बैठकर पानी की बोतल उठाई तो सामने कांच में अपनी परछाई दिखी। पसीने की लकीरें, हल्की थकावट, लेकिन आंखों में अब भी वही स्पष्टता। उसने खुद से कहा, कभी कभी काम सिर्फ काम नहीं होता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान का सबसे मजबूत कवच बन जाता है। रैना ने अपने बैग से टूटी इत्र की शीशी का टुकड़ा निकाला। अब भी उसमें हल्की खुशबू बाकी थी। उसने उसे अपनी जेब में रखा और मुस्कुरा दी। महक वो नहीं होती जो किसी और से मिले, महक वो होती है जो तुम्हारी सीमाओं की मिट्टी में पैदा होती है।